हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 25, 26 एंड 27। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगदास की कृपा की बहुत आवश्यकता है, इसलिए हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं और भौतिक बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके भगवान से कृपा की याचना करेंगे ताकि हम जो समय पढ़ रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, कृष्णा तदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराज हंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा, स्मरतव्यं सततं विष्णुं, विस्मर्तव्यो न जातुचेत् सर्वविद्धि निषेधास्यो, एतयोरेव किंकर आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममालम प्रीमा पुमर थोमा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी कौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 17 जिसका शीर्षक है कलि को दंड तथा पुरस्कार, श्लोक संख्या 25। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। इदानीं धर्मपादास्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यत, तं जिगृक्षत्य धर्मोऽयम् अनृत्ते नैधितं कली। इदानीं धर्मपादास्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यत तं ऋग्रिक्षत्य धर्मोऽयम् अनृत्ते नैदितः कली। इदानीं धर्मपादास्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यत तं ऋग्रिक्षत्य धर्मोऽयम् अनृत्ते नैदितः कली। इदानीं शब्दार्थ देखिए, इदानीं धर्मपादास्ते, इदानीं मतलब इस समय, धर्म हे धर्म रूप, पाद यानी पांव ते तुम्हारे, सत्यम निर्वर्तये किसी तरह, सत्यम यानी सत्य, निर्वर्तये यानी किसी तरह से जीना, यतः जिससे, तम उसको, जिग्रिक्षिति यानी नष्ट करने का प्रयत्न करता है अधर्म, अधर्म रूप, अयम यानी यह, अनृत्तेन यानी छल से, सत्य से, असत्य से, एतदि एदिता यानी बढ़ता हुआ, कली यानी साक्षात, यानी महाराज जो परीक्षित हैं, उनको जब कलयुग ने, सॉरी, उनको जब धर्म रूपी बेल ने अपने कष्ट का कारण नहीं बताया और उनसे कहा कि आप स्वयं ही मेरे कष्ट का कारण ढूंढ निकालिए, तो फिर उन्होंने बताया कि सत्युग में तुम्हारे चारों पैर जो थे वो सही थे, सत्युग में तपः शौचम दया सत्यम इति पादास्कृते कृता, पहले लोगों में सत्युग में तुम्हारे चारों पैर थे, फिर उसके बाद द्वापर युग आया तो तुम्हारे तीन पैर रह गए, है ना, उसके बाद वापस, सॉरी, सत्युग के बाद त्रेता युग में तुम्हारे तीन पैर रह गए, द्वापर यानी दो पैर रह गए, और आज कलयुग है तो आपके तीन पैर कट गए हैं। और इदानीम धर्म पादास्ते, तीन तो आपके कट गए, लेकिन सत्यम निर्वर्तये धता, निर्वर्तये धता मतलब बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई से, अब एक ही सत्य नाम का आपका पैर जो है वो टिका हुआ है, वो बस बहुत ही मुश्किल से जी रहा है, एक सत्य जो है वो अभी तक बाकी है, बाकी तीन पैर तो आपके कट गए। इदानीम धर्म पादास्ते, आपके बाकी जितने पांव हैं वो तो कट गए, अभी एक ही धर्म पर आप टिके हुए हो, वो भी लड़खड़ा रहा है। तम जिग्रिक्षत्य अधर्मोयम, मतलब अधर्म जो है वो उसको जिग्रिक्षत्य यानी क्षति पहुंचाना चाहता है, जान से उसको भी निकालना चाहता है, आपके पांव से, आपके धड़ से उसको भी नष्ट करने के लिए, जिग्रिक्षत्य उसको बहुत क्षति पहुंचाने का कारण बन रहा है, कौन, अधर्म, अयम यानी यह। और आगे कहते अनृत्ते नैथितः कलि, अनृत्ते मतलब ये आपके इस सत्य रूपी पेड़ को किस तरह से क्षति पहुंचा रहा है, अनृतेन यानी छल से, असत्य से, और एतदितः यानी ये छल और असत्य इस कलयुग में बढ़ रहा है, इसके कारण आपका ये अंतिम पेड़ भी बहुत ज्यादा दुखमयी अवस्था में है, नष्ट होने वाला है। वास्तव में भक्तों, जैसे हम जानते हैं कि सत्य केवल भगवान है, सत्य केवल धर्म है, लेकिन इस कलयुग में इस सत्य को अधर्म के द्वारा झुटलाया जाता है। आज हम देखें कि भगवान को भगवान नहीं माना जाता, आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे केतव धर्म है, कोई देवताओं को भगवान मान रहे हैं, कोई मतलब प्रचारक जो होते हैं वो भी बताते हैं कि ये देवी देवता भगवान है, तो उनकी उपासना करो आपको, है ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई बोलते हैं कि आप किसी मनुष्य की पूजा करो, उससे आपको, है ना, कल्याण होगा। कोई बोलते हैं पीर फकीर कबरें और ये पितृगण, उनकी उपासना करो। कोई भगवत धर्म के विषय में नहीं बताता, कोई सत्य के विषय में नहीं बताता, हर जगह पाखंड हो रहा है, हर जगह अधर्म हो रहा है, हर जगह जो है वो वास्तविक धर्म का खंडन किया जा रहा है। और जो बेवकूफ बना रहे हैं वो तो बना रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बेवकूफ तो वो हैं जो इनकी ऐसी बातों से बेवकूफ बन रहे हैं। आज हम देखते हैं बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड लोग होते हैं, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वो किसी को भी भगवान मानने के लिए तैयार। बाकी साइंस की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उनको भले कितने ही साल तक MBBS करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़े, वो करने के लिए तैयार है। उनको अगर भौतिक कोई भी इंजीनियर बनना हो, कंप्यूटर सीखना हो, ये करना हो, वो करना हो, वो उसके लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके एजुकेशन प्राप्त करके टीचर ट्यूशन स्कूल सब रख के वो अपनी भौतिक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बहुत ही ईगरनेस के साथ अपना बहुत सारा समय भी देंगे, धन भी देंगे, लेकिन वास्तविक धर्म को सीखने के लिए कोई उत्साह नहीं है। किसी के मन में कोई इच्छा तक नहीं है कि हमें हमारे धर्म के विषय में पता चले, हम अपने वास्तविक धर्म को जाने। आजकल धर्म की ओर आकर्षण ही समाप्त हो गया है लोगों का, क्योंकि अधर्म जो है वो इतना सज धज कर सामने आता है। जैसे ये बोलता है तम जिग्र क्षत्य अधर्मोयम, अधर्म जो है वो उसको नष्ट करना चाहता है, और अनृत्येन छल से असत्य से, और छल और असत्य इतना डेक्यूरेट होकर हमारे सामने आते हैं कि धर्म जो है उसकी चमक हमें दिखती नहीं है, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही है। तो इसलिए महाराज परीक्षित जो है वो धर्म रूपी बेल को कह रहे हैं कि अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कला रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु चार मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। आजकल कोई भी कुछ भी धर्म बता देता है कि ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, कुछ भी कोई उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता, कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बता दिया जाता है कि हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरह से भौंकने वालों का कोई कुछ भी कह दे तो वो धर्म थोड़ी होता है। धर्म तो मानव कृत सूत्रों पर, अपितु चार इन मानवकृत सूत्रों पर, यानी जो मानवों ने, जो मनुष्यों ने अपने जो ये सूत्र बना दिए हैं कि ये धर्म है, ये धर्म है, इस पर नहीं, अपितु चार मूल अनुष्ठानों पर टिका हुआ है। जैसे साफ साफ भागवत कहता है तप शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता, ये जो धर्म है वो इन चार पैरों पर खड़ा हुआ है, धर्म चार स्थान स्तंभों पर खड़ा हुआ है, चार मूल अनुष्ठानों पर टिका हुआ है। और ये कौन से हैं? तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जनता को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सिखाना चाहिए। हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो मनुष्य बना है तो वो अपने धर्म के विषय में जाने, क्योंकि शास्त्र कहता है धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्माविहीनो पशु भी समान। मनुष्य कहलाने के लिए तो सब उत्सुक है, मगर धर्म के सिद्धांतों को ना कोई समझना चाहता है और ना ही उसको कोई फॉलो करना पड़ता है। आज हम किसी को बताते हैं कि हमें नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए तो वो बोलते दूसरी कोई बात बताओ। ये नॉन वेजिटेरियन तो हम नहीं बोल छोड़ सकते, मतलब इतना फखर से अपने इस अधर्म को स्वीकार करने के बाद उनको कोई गिल्ट भी अंदर से नहीं होता। नशा करने के लिए किसी को छोड़ो तो बोलते तुम लोग तो है ना जीने नहीं दोगे, ये भक्ति कोई सिंपल चीज बताओ, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, इस तरह से तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब। लेकिन शास्त्र कहता है कि शुरू से ही मनुष्य को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि आप मनुष्य हो तो आपको मनुष्य जैसा कार्य करना है। तो बचपन से ही इन सिद्धांतों को सिखाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, और स्पेशली कर्तव्य है ये धार्मिक जो यो नेता होते हैं ना, जो राजा होते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि अपने राज्य में ऐसा कोई अधर्म होने ही नहीं दें। आज तो लाइसेंस मिलता है कि हाँ भाई आप बूचर शॉप खोल सकते हो, कसाई घर खोल सकते हो, वाइन स्टोर्स खोल सकते हो, ये कोई सभ्यता नहीं है। राजा को तो दंडित करना चाहिए उन लोगों को जो कि पशुओं की हत्या करते हैं, जो कि नशा करते हैं, जो परस्त्री संग करते हैं, उनको ऐसा दंड मिलना चाहिए ना कि जो दूसरा है ना वो ऐसा सोचकर भी कांप जाए, ऐसा करने के बारे में सोचे और उसे लगे कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर तो है ना मेरा इस राज्य में जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज बहुत ही बड़े बड़े जो कंट्रीज है ना उसमें क्या है, रोड पे अगर हम कचरा फेंकते हैं ना तो ये ऐसा लगता है बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, बहुत बड़ा। एक मिनरल वाटर की बोतल होती है उसके ऊपर एक छोटा सा प्लास्टिक का कवर लगा होता है, उस कवर को खोल के फिर ढक्कन है ना खोलना होता है, तो वो प्लास्टिक का छोटा सा पीस भी, अगर छोटा पेपर भी अगर हम रोड पे फेंकते हैं तो सब आ जाते हैं वहां पर, ये किसने किया है इतना बड़ा जुर्म, मतलब उसके लिए वो सब उसको डांटने लगते हैं, उसको पीटने लगते हैं। लेकिन यही व्यक्ति जो है ना वो होटल्स में जाकर बड़े लोगों पशुओं को मारा जाता है, इतने पशुओं की हत्या की जाती है, उनको मारा जाता है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता, उसके लिए कोई कानून नहीं है, नशा किया जाता है, बियर बाल खोले जाते हैं, रात भर तक अवैध संग किया जाता है, कोई इसके लिए कानून नहीं है। तो इसी के कारण अधर्म जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि धर्म का जो अंतिम पैर है वो भी लड़कर आ रहा है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि बचपन से इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सिखाना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुख करना हो किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो, यथा उपवास करना। मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं, ना राजनीतिक ना ही अन्य कोई। यहाँ आजकल अगर कोई तपस्या करता भी है तो भी वो या तो सबसे पहले सकाम कर्म होता है, वो तपस्या नहीं होती है, ये प्राप्त हो जाएगा, मैं ये उपवास रखूंगा तो ये मिल जाएगा, ये कोई तपस्या नहीं होती है, ये सौदागिरी होती है। हम तुम्हारे लिए भूखे रहेंगे और तुम हमारी इस मांग को पूरा करोगे, ये तो समझो इमोशनल बेवकूफ करना होता है भगवान या देवताओं को। वो तपस्या जो यहाँ पर लिखा गया, जो धर्म का चरण है, वो ये है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए कुछ न कुछ त्याग करना, मतलब ऐसा कुछ स्वीकार करना अपनी इच्छा से जो कि भले ही हमारे शरीर के लिए सुख करना हो लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो ना। आज तक तो आजकल क्या होते हैं, रोड पर वो धरना करते हैं, वो निराहार रहेंगे, नहीं खाएंगे, ये करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, ये तपस्या नहीं होती है, ये तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति का एक अलग तरीका होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में इस तरह की तपस्याओं को श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवद गीता में 17.5 और 6 में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्यों के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। भगवान बोलते हैं ये तपस्या नहीं होती है जो दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाए या कोई भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वो रजोगुणी और तमोगुणी तपस्या होती है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है, केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है लेकिन मन की स्वच्छता परम आवश्यक है और यह भगवान के यशोगान से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मेल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ कर ही नहीं सकता। तो जो दूसरा चरण है वो है पवित्रता। तो शरीर को तो हम भले नहा के पवित्र कर सकते हैं लेकिन हमारा शरीर पवित्र हो और हमारा मन मलिन हो तो कोई फायदा नहीं। ज्यादा जरूरत तो हमारे मन की पवित्रता की है क्योंकि ये जो अधर्म कर रहे हैं वो हमारे मन की प्रेरणा से कर रहे हैं और ये मन केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करने से, भगवान का यशो गान करने से, भगवान के पवित्र महामंत्र जो कि भगवान से अभिन्न है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र के जप से मन पवित्र होगा। लेकिन मन की स्वच्छता परम आवश्यक है। श्रीमद् प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो मन जो है उसकी जो पवित्रता है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है और ये भगवान के यशोगान के से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मेल को केवल भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता है। तो ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती। ईश्वर विहीन मन, जहां पर भगवान का यशोगान नहीं, जहां पर भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं, तो भले ही कितनी ही क्लासेस अटेंड कर ले वो, भले ही उनको सभ्यता या सोफिस्टिकेटेड जीवन की कितनी शिक्षा क्यों न दी जाए, लेकिन हृदय के अंदर वो वासना भरी हुई है, वो इंद्रिय भोग की जो कामना भरी हुई है, जो क्रोध भरा हुआ है, जो ईर्ष्या भरी हुई है, वो कभी भी आपको पवित्र होने नहीं देंगे। और ये सब जो असुर हमारे हृदय में घुसे हुए हैं, वो केवल हरि नाम से ही भाग सकते हैं। इसलिए क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, और यह कारण है कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतया लैस हो जाए, भौतिक दृष्टि से भले ही कितना एजुकेटेड प्राप्त एजुकेशन प्राप्त कर ले, भले कितना बड़ा साइंसदान बन जाए, भले कितना बड़ा फिलोसोफर बन जाए, लेकिन हृदय पवित्र नहीं है तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं, दुई पद पशु, दो पांव वाला पशु है वो। इसलिए आगिष्ण प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें वस्तुओं को उनसे प्राप्तव्य कर्म से देखना चाहिए। और कलयुग में असंतोषी मानवीय सभ्यता का प्राप्त कर्म फल है। आज हम कोई भी कर्म करें तो हमें देखना चाहिए कि उस कर्म से हमें कितना संतोष मिल रहा है, कितना आनंद मिल रहा है। और कलयुग के लोगों का क्या है कि वो कितना भी कमा लें, कितना भी उनको भौतिक भोग मिल जाए, कितनी ही वास्तविक ये भौतिक सुविधाएं उनको प्राप्त हो जाए, कोई संतोष दिख रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है? जो धन के लोभी होते हैं उन्हें और धन चाहिए, और धन चाहिए, और धन चाहिए। जिनको काम वासना की तृप्ति करनी होती है वो और करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसी मेडिसिंस लेते हैं कि किसी तरह से मैं अपने इस जिस्म की भूख को खत्म कर सकूं। कुछ धन के लोभी होते हैं, कुछ शरीर के लोभी होते हैं, कुछ क्या चाहते, किसी को क्या चाहिए, किसी को चाहिए, असंतोष दिखता है। चाहे कितना भी मिल जाए, और जो इतने असंतोषी लोग होते हैं ना, उनको भले ही स्वर्ग का राजा भी बना दिया जाए ना, तो भी उनको संतोष नहीं आएगा, क्योंकि हृदय मलिन है। संतोष तब आता है जब हृदय पवित्र है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव सभी मना शांति चाहते हैं। यह मना शांति सत्युग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्यों में उपरयुक्त गुण पाए जाते थे। कौन से गुण? दया, तपस्या, सत्य, पवित्रता, ये सब गुण पहले सत्युग में पाए जाते थे, इसलिए हृदय जो थे वो संतुष्ट थे। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में तीन चौथाई रह गए। द्वापर में वे आधे हुए और कलयुग में केवल एक चौथाई रह गए हैं। और जिस तरह असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट कर देता है। स्त्री संसर्ग से के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट हो जाती है, और अत्यधिक लत या नशे से दया भी नष्ट हो जाती है। बार बार बताया जाता है, हमारा शास्त्र जो है वो प्रारंभ इस बात से होता है कि हमें ये चार काम नहीं करने। इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने की पहली शर्त ये है कि आपको चार नियम का पालन करना पड़ेगा। चार नियम का पालन जब पहली बार यहाँ के लोगों ने सुना, भागवतम तो पढ़ते थे लेकिन किसी को ये समझ में आया ही नहीं कि धर्म क्यों दुखी है। भागवतम पढ़ने वाले भी मांसाहार करते थे, नशा करते थे, ये करते थे, इवन जो प्रचारिक होते थे वो भी करते थे, लेकिन ये तो कृपा है, करुणा है श्रील प्रभुपाद जी की, जिन्होंने बताया कि धर्म की हानि क्यों हो रही है। या आज अगर हमारे पास ये पर्पस नहीं होते, हमें अगर इतना अच्छे तरीके से श्रील प्रभुपाद जी और उनके जो अनुयायी भक्त हैं उन्होंने ये सब चीजें नहीं बताई होती, तो आज हम भी इसी समाज में के हिस्से होते थे। हमें भी ये पता ही नहीं होता कि धर्म आखिर किस चीज पे टिका हुआ है। इसीलिए ये जो हमारा इस्कॉन संस्था है, ये जो कृष्ण भवनम अमृत होने की संस्था की पहली शर्त ये है कि आपको पहले धर्म पर चलकर मनुष्य तक पहुंचना होगा। आज कोई भी, इसीलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो इस कौन संस्था को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। ये जो अपराध हम कर रहे हैं, जो अधर्म हम कर रहे हैं, उससे हमें बचना है। लेकिन आज का मनुष्य धर्म भी ऐसा चाहता है जिसमें उसके दिल की बात होनी चाहिए। हाँ, गोश्त खाना है, नशा करना है, खाओ करो, मजे करो, बस खाली जो अमुक अमुक व्यक्ति है उसको धन संपत्ति देते जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की बातें हैं, ये कोई धर्म नहीं होता। इसलिए श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत ही सुंदर सिद्धांत देते हैं कि क्या करना है, कि अगर हम तपस्या के चरण को बचाना चाहते हैं तो फिर हमें नशा नहीं करना है, अगर दया के चरण को बचाना है तो फिर हमें मांसाहार नहीं करना है, अगर धर्म के पवित्रता के चरण को बचाना है तो अवैध संग नहीं करना है, और यदि सत्य को बचाना है तो जुआ नहीं खेलनी है। अत्यधिक झूठे विज्ञान से सत्य भी नष्ट हो जाता है, और भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सारे दोष जो अधर्म के हैं, जो धर्म को इतना लाचार कर दिया है, इतना दुखित अवस्था में जब डाल दिया है, तो धर्म जो है उसको पुनर यदि उसका उद्धार करना है तो उसका एक ही तरीका है कि भागवत धर्म का पालन किया जाए। जो भागवत धर्म क्या है, भगवान की शरण लेना। जब एक व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो इन सब अपराधों से दूर हो जाता है। इसीलिए सारे मानव समाज का ये कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को भागवत धर्म की शिक्षा लें। इस भागवत धर्म की शिक्षा से ये अधर्म जो है वो दूर हो जाएगा और धर्म जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हम संतोष रहें, यदि हम चाहते हैं कि हमें आनंद प्राप्त हो, तो उसका एक ही तरीका है कि हमें भागवत धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या है भागवत धर्म? भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, जो अनुकूल वस्तु है, अनुकूलस्य संकल्पो, अनुकूल वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल हैं, ये जो चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं, उनको स्वीकार करना ही भागवत धर्म है। भगवान के पवित्र नाम का जप करना ही भागवत धर्म है, और भगवान की कथाओं को श्रवण करना ही भागवत धर्म है। जब तक कोई इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो कभी भी आनंद से नहीं जी सकता, भले उसे भौतिक दृष्टि से कितना ही वैभव प्राप्त हो जाए, यश प्राप्त हो जाए, सुविधाएं प्राप्त हो जाए, लेकिन संतोष नहीं मिलेगा। आगे परीक्षित महाराज कहते हैं, अयम च भूमिर् भगवता न्यासितो रुभरासति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृतकौतुका। अयम च भूमिर् भगवता न्यासितोरुभरासति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृतकौतुका। अयम च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरासति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृतकौतुका। अयम च भूमिर्भगवता, अयम मतलब यह, च भूमिर भगवता, भूमिर यानी पृथ्वी की सत्ता, ये जो भूमि है, ये जो पृथ्वी महारानी जो गऊ के रूप में खड़ी है, भगवता भगवान द्वारा न्यासित यानी स्वयं तथा अन्यों के द्वारा संपन्न, उरु यानी भार या भरा यानी बोझा, सती ऐसे करने पर, यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी महारानी है उनका दुख दूर करने के लिए, उनका बोझ दूर करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं तथा अन्यों के द्वारा न्यासित, तो वो आते हैं श्रीमत तत्पदन्यास है। और जब वो भगवान यहाँ पर होते हैं, उनके जो चरण होते हैं, श्रीमद मतलब सबके लिए कल्याणकारी, उनके जो चरण कमल होते हैं, सर्वतः कृत कौतुका, सर्वत्र मतलब हर तरफ से उसका कल्याण करते हैं पृथ्वी का। जब भगवान इस संसार में होते हैं तो उनके आने का एक मकसद है क्या? कि वो पृथ्वी का भार हल्का करने, यदा यदा ही धर्मस्य, धरती पर पृथ्वी पर जब अधर्म आता है और धर्म जो है उसका विनाश होने लगता है तो भगवान आते हैं पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। पृथ्वी का भार क्या है जानते हैं भक्तों? पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, परंतु पृथ्वी इनसे दुखी नहीं होती। वास्तव में ये पृथ्वी जो है वो भगवान श्री विष्णु की पत्नी है। जब भगवान ने वराह रूप में अवतार लिया था तो पृथ्वी जो है उनको अपने दांतों के ऊपर उठाया था और उस समय पृथ्वी का कितना कल्याण किया था। तब पृथ्वी जो है वो उन्होंने भगवान को अपना पति रूप में स्वीकार किया था और पृथ्वी और भगवान की एक संतान भी है भूमासुर, जिनका वध हुआ था, वो भागवत में कथा आती है। ये पृथ्वी जो है वो भगवान की शक्ति है, भगवान की पत्नी है और ये बहुत है, और ये सारे जितने भी हम संतान है ना वो पृथ्वी माता की संतान है। भगवान स्वयं कहते, भगवत गीता में कहते हैं, मम योनि महत्थर्म तस्मिन् गर्वं ददामहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नाम नामक समय ये समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भ प्रदान करता हूँ। तस्मिन् गर्भम ददामि हम, उसके बाद क्या होता है, सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम् बीज पदपिता। सर्व योनिषु कौन्ते, जितनी भी योनियां है ना हे कौन्ती पुत्र, ये तभी संभव हुई है, मूर्तयः संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महत् योनिर्, ये जो प्रकृति है उसको मैं क्या करता हूँ, अहम् बीज प्रदपिता, भगवान बीज प्रदपिता है और प्रकृति जो है वो समस्त योनियों की उत्पन्न करने वाली है। और इस संसार में भी हम देखें, यदि कोई माता हो उसकी संतान, उसके पास भले 10 संतान हो, वो सबका भरण पोषण करेगी, सबको प्रसाद खिलाएगी, सबका ख्याल रखेगी, लेकिन अगर उनमें से एक भी संतान क्रूर बन जाती है, माता की आज्ञा का पालन नहीं करती है, पिता का आदर नहीं करती है, तो फिर वो माता बहुत दुखी होने लगती है, है ना? एक माता का सबसे बड़ा दुख है कि उसकी संतान जो है वो गलत कार्य करे, अपने पिता की आज्ञा ना माने, अपने पिता का निरादर करे, उससे बड़ा दुख एक माता के लिए कोई नहीं होता। उसी तरह ये पृथ्वी माता भी बहुत दुखी होती है जब उसकी संतान जो है वो भगवान जो हमारे वास्तविक पिता है उनके आदेश का पालन नहीं करती है, उनके आदेश के ऊपर चलती नहीं है, उनका आदर नहीं करती है, उनका सम्मान नहीं करते हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। एक संतान यदि ये स्वीकार न करे कि ये मेरा बाप है और मुझे इसकी बात माननी है, ये बात यदि कोई संतान स्वीकार ना करे तो उससे बड़ा दुख एक माँ का कोई नहीं हो सकता। और आज हम देखते हैं कि पृथ्वी महारानी कितना दुखी होंगी कि सब लोग जो है वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, भगवान का आदर नहीं करते। इसीलिए महाराज परीक्षित कहते हैं, अनुवाद देखिए, निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। यानी जब भगवान थे यहाँ पर, फिर तो भगवान स्वयं है ना सबका विनाश कर खुद भी करते थे, अब अधर्मियों का जो भगवान की सत्ता को नहीं मानने, जो पृथ्वी के दुख का कारण बनते उनको स्वयं भी मारते थे और कभी कभी क्या करते थे किसी और के द्वारा मरवाते थे। जैसे युद्ध करा, ये महाभारत का युद्ध किया और 64 करोड़ सेना का यहाँ पर हत्या हो गई, तो कितने सारे ये सारे अधर्म का जो साथ दे रहे थे, धातराष्ट्र पुत्रस्य दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि दुर्योधन को युद्धे प्रिय, उनके मन को जो प्रसन्न करने के लिए अधर्मी जो उनके साथ हो गए थे, उन सबका सफाया करवा दिया भगवान ने अर्जुन के द्वारा या पांडवों के द्वारा। कभी जरासंध को भगवान ने स्वयं नहीं मारा, बहुत सारे अपराधियों को, बहुत सारे पापियों को लेकर आते थे, लेकिन फिर वापस से भगवान उन दो सारी सेना को मार देते थे, जरासंध को छोड़ देते थे। फिर जरासंध का वध करने के लिए भगवान ने भीम को चुना। तो भगवान जब होते हैं तो फिर पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए भगवान स्वयं कुछ न कुछ योजना बनाते रहते हैं। इसीलिए बता रहे कि तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। अब क्या आगे कहते हैं, और अब जो है इस श्लोक में महाराज परीक्षित जो है वो पृथ्वी के दुख का कारण बता रहे हैं। पहले तो धर्म ने बोला था ना कि आप स्वयं ही बताओ कि क्या क्या कारण है मेरे हमारे दुख का। तो धर्म के दुख का कारण यही है कि धर्म के तीन पैर कट गए और तीसरा जो सत्य है वो भी लड़खड़ा रहा है, इसके कारण अधर्म के कारण। तो फिर अधर्म क्यों आया है, क्योंकि कलयुग के कारण अधर्म आया है, तो इसके लिए धर्म दुखी है। और पृथ्वी क्यों दुखी है उसके विषय में अभी बता रहे हैं। शोचत्य शुकला साध्वी दुर्भगे वो जिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याचा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। शोचत्य शुकला साध्वी दुर्भगे वो जिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याचा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामति। शोचत्य शुकला साध्वी दुर्भगे वो जिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याचा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। महाराज पक्ष परीक्षित बोल रहे हैं कि पहले तो भगवान थे तब तो पृथ्वी की सुरक्षा हो रही थी, भगवान किसी न किसी तरह से उनकी सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन आज मैं ये जो गौरूपी पृथ्वी है उनके शोक का यह कारण समझ रहा हूँ। शोचत्य शुकला साध्वी, ये सती है, ये साध्वी है, और ये बहुत ज्यादा अश्रुकला, उसके आंखों में आंसू भरे हुए हैं, ये बहुत ज्यादा शोक कर रही है। दुर्भगा, अत्यंत अभागी है, अपने दुर्भाग्य पे शोक कर रही है कि अब भगवान उससे दूर। ये उजिता का मतलब होता है त्यक्त्वा सती, यानी उस भगवान ने इसको त्याग दिया या भगवान यहाँ से चले गए, इसलिए अपने आप को दुर्भाग्य अनुभव कर रही है। एक सती स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही होता है कि उसका पति उसको छोड़कर चला जाए, और क्योंकि भगवान अब यहाँ पर नहीं है, जब भगवान यहाँ पर थे तब तो वो हर तरह से इसकी सुरक्षा करते थे, हर तरह से उसको मतलब आनंद प्रदान करते थे, मगर अब तो भगवान यहाँ पर नहीं है, इसलिए दुर्भगे वो जिता सती, इसके कारण क्योंकि भगवान चले गए हैं, ये बहुत दुर्भाग्य अपने आप को अनुभव कर रही है, और इसलिए अब ब्राह्मणिया नृपव्याजा। अब क्योंकि ऐसे लोग आएंगे, नृप राजा, नृपव्याजा मतलब जो शासक आजकल जो गवर्नमेंट संभाल रहे हैं, जो तथाकथित राजा बने हुए हैं, वो कैसे हैं, अब्राह्मणिया, वो संस्कृति विहीन है, उनको तो ये पता भी नहीं है कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। आज पहले क्या होता था, राजा को उनके गुणों के अनुसार राज्य दिया जाता था, उसका ऐसा प्रशिक्षण किया जाता था, बचपन में उसको गुरुकुल में भेजा जाता था और उसको ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, उसके बाद उसको अधिकार होता था शासन करने का, राज्य करने का। ऐसे आज की तरह थोड़ी कोई भी मवाली खड़ा हो जाएगा, उसको चार वोट मिल जाएंगे तो वो राजा बन जाएगा, और वो आके पहले तो हजारों कसमें लेगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और आके केवल इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय भोग करेगा, सिर्फ राज्य को खा के चला जाएगा।
پھر اس کو پتا ہے 5 سال کے بعد مجھے تو نکلنا ہی ہے, میں تھوڑی نا کوئی اس کے ساتھ, اس پرجا کے ساتھ مجھے کوئی سنسیئر ہونا ہے, کوئی سنسیئر نہیں ہے. لیکن پہلے سے تھوڑے ہوتا تھا, اسی لیے پریشت مہاراج کہہ رہے ہیں اب برہمنیا نرپب ویاجا, جتنے بھی شاسک ہیں ان کو کچھ بھی سنسکرتی کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے. شودرا بھوکشنتی مامتا, شودرا یہ سارے شودر ہیں جن کو کوئی گیان نہیں ہے, جن کو کچھ پتا نہیں ہے اپنی سنسکرتی کا, اپنے دھرم کا, جن کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ پشوؤں کو مارنا کتنا زیادہ اپرادھ ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کریں گے, آئیں گے اس پرتھوی پر اور بوکشنتی مامی تھی, پرتھوی بیچاری سوچ رہی ہے کہ پھر وہ میرا شوشن کریں گے, میرا بھوگ کریں گے, مجھے بہت دکھی کریں گے, اور بھی بھوشیہ میں نہ جانا آج سو آج جو یہ کلیوگ ہے اس کو آئے ہوئے کچھ ہی سمے ہوا ہے, اس سمے تو جسٹ ابھی کلیوگ آیا تھا اور پرتھوی سوچ کر دکھی ہو رہی تھی کہ آگے نہ جانے میرا کیا حل کریں گے یہ اپرادھی, تو میرا بہت شوشن کریں گے. اور مہاراج پریشت بول رہے ہیں اس بیچاری ستی سادھوی پرتھوی کا یہی دکھ کا کارن ہے کہ اس سنسار میں ابھی ادھرم بڑھنے والا ہے اور میرے پتی بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں, کرشنا چلے گئے ہیں, ابھی کون دھرم کی رکشا کرے گا. انواد, اب یہ ستی درباگیہ وش بھگوان دوارا پریتیکت ہونے کے کارن اپنے نیتروں سے اشرو بھر کر اپنے بھوشیہ یعنی بھاگیہ کے لیے شوک کر رہی ہے, کیونکہ اب وہ شاسک کے سوانگ بنانے والے نمن جاتی کے پروشوں دوارا شاست تتھا بھوگیہ ہے. شیلا پربھوپاد جی بہت سندر ریتی سمجھائیں گے تاتپریہ شیلا پربھوپاد دوارا. شیلا پربھوپاد کی جائے ہو. شیلا پربھوپاد جی کہتے ہیں کشتریہ راجیہ کے شاسن کے نمت ہوتا ہے. کشتریہ کیا ہوتا ہے؟ راجیہ کے شاسن کے نمت, اسے راجیہ سنبھالنا ہے. اپرتیکشتہ نمن جاتی کے لوگوں کو پرشاسک کے آسن پر نہیں بٹھایا جا سکتا. جو نمن جاتی کے ہوتے ہیں, جو شودر ہوتے ہیں, جو کشتریہ نہیں ہوتے, جن کے پاس شاستریہ گیان نہیں ہوتا ہے, جن کے جو شستر اٹھانا نہیں جانتے, جو شاستر کے سدھانت کو نہیں جانتے, ان کو راجیہ کے شاسن پر نہیں بٹھانا چاہیے. درباگیہ وش کل یوگ میں نمن جاتی کے لوگ پرشکشن کے بنا ہی جنمت کا مطلب ہوتا ہے ووٹوں کے بل پر شاسک کا پد گرہن کیے ہوئے ہیں, اور ایسے لوگ پیڑتوں کی رکشا کرنے کی بجائے ایسی استھتی اتپن کرتے ہیں جو سبوں کے لیے اسہیہ ہوتی ہے. اب وہ لوگ جن کو شاستر کا گیان نہیں ہے, جن کو کچھ جن کے اندر کچھ کشتریہ دھرم کا پالن کرنے کا اندر سے کوئی اچھا نہیں ہے, جو کیول بھوگ بھوگنے کے لیے راجا بنے ہیں, وہ جنمت سے جو راجا بن گئے ہیں, تو وہ کوئی پیڑتوں کی رکشا کرنے کے لیے یا اپنی پرجا کا دکھ دور کرنے کے لیے تھوڑے آئے ہیں, وہ تو کیول اپنی اندر ترپتی کریں گے. تو اس لیے شلبر وہ پیڑتوں کی رکشا کرنے کی بجائے ایسی استھتی اتپن کر دیتے کہ سبوں کے لیے اسہی ہوتی, سب لوگ دکھی ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جنتا کے سارے سکھوں کی پرواہ نہ کر کے اپنی ترپتی کرتے ہیں, اور اس طرح ستی دھرتی ماتا اپنے پتروں کی, منوشوں تتھا پشوؤں کی دیانیہ دشا دیکھ کر چلاتی ہے. ایک ماتا کبھی بھی اپنے پتروں کی, اپنے سنتان کی دکھدائی اوستھا کو نہیں دیکھ سکتی, تو دیکھ رہی ہے وہ کیا کرے. پرتھوی مہارانی دیکھ رہی ہے کہ میری جو سنتان ہے, جو اچھے جو ویکتی ہیں, جو بھکت ہیں, ان کو کتنا کشٹ مل رہا ہے, ان کو تو اور بھی پیڑا مل رہی ہے, اور راجیہ کا جو کاروبار سنبھال رہے ہیں وہ سارے ادھرمی ہیں اور وہ سب کے ساتھ ادھرم کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو پرتھوی ہے وہ اپنی سنتانوں کی دینی دشا دیکھ کر چلاتی ہے. کلیوگ میں سنسار کا بھوشیہ ایسا ہی ہوگا اور تب ادھرم کا بول بالا ہوگا. اب ایسا ہو گیا ہے, یہ کلیوگ کا یہ درباگیہ ہے کہ سب لوگ کے ساتھ ادھرم ہی ہونے والا ہے. ادھرم کے اترکت اور کچھ نہیں ہے. ادھارمک ورتیوں کا دمن کرنے کے لیے اپیوکت راجا نہ ہونے پر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, ایک لائن میں سولوشن ہے.
अगर वास्तव में कोई अधर्म से बचना चाहता है, वास्तव में यदि कोई शुभ चाहता है, इस कलयुग में यदि किसी कारण से कल्याण संभव है, तो ये अंतिम लाइन मिश्रा प्रभुपाद जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा के न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवतम की शिक्षा से विधि पूर्वक भिक्ष्य बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी आदि के मिलन वातावरण को हटाया जा सकेगा। अगर कोई चाहता है कि ये जो दुख पृथ्वी सह रही है, जो ये जो धर्म का जो ये इतना बुरा हाल हुआ है, उसको यदि ठीक किया जाए, अगर उसका कोई एक तरीका है, तो वो श्रीमद् भागवतम में जो शिक्षा दी गई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हमारे हमें जो निभाने से हम धर्म को पुनः ठीक कर सकते हैं और पृथ्वी के कष्ट को दूर कर सकते हैं, तो केवल ये भागवतम की शिक्षाओं को श्रवण करना, उनको अपने जीवन में लागू करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, इसी से हम संतुष्ट हो सकते हैं, इसी से धर्म पुनः सुरक्षित हो सकता है, इसी से पृथ्वी यानी पृथ्वी की जो पीड़ा है वो समाप्त हो सकती है। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी सदैव कहते थे सारा विश्व जो है वो कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण दुखी है, इसीलिए हर एक जीव का कर्तव्य है कि जितना संभव हो वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे, श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का प्रचार करे, हमारे भागवत धर्म का प्रचार करे, ताकि हम अधर्म को धर्म पर विजय न होने दें और धर्म स्थापित करके हम गुरु और गौरंग के प्रसन्नता का कारण बन सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।